ओम शिव 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 शिव। परम कृपालु करुणामय परमपिता परमात्मा की अहेतु की कृपा से चातुर्मास के पावन अवसर पर भगवान की दिव्य विभूति सागर के तट पर विश्वंभर देवाधिदेव महादेव श्री बाबुलनाथ जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरुजनों की इस पवित्र तपस्थली में बैठ करके हम सब साधक वृंद विगत कुछ दिनों से आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित धन्याष्टकम का आश्रय लेकर के अपने जीवन को कैसे धन्य बनाएं, अपने जीवन में परम मंगलमय जो साध्य है उसे हम कैसे अर्जित करें, साधना के स्टेजेस क्या है, कहां से हमें अपनी आध्यात्म यात्रा को आरंभ करना है, किन पथों से होकर के हमें गुजरना है, इसका एक अवलोकन, एक चिंतन, एक मनन इस प्रातर सत्र में हम सब साधक लोग मिलकर के कर रहे हैं। तृतीय श्लोक का चिंतन चल रहा है। द्वितीय श्लोक में आचार्य श्री जी ने अंत में एक बात बताई, परात्म विद्या कांता शुका वन गृहे विचरन्ति धन्या। परात्म विद्या को जिसने अपने जीवन का सहचारी बना लिया है, अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया है, ऐसे भाग्यवान साधक वन गृहे विचरन्ति धन्या, वन में एकांत में अपने जीवन को धन्य करते हुए निवास करते हैं। जब ये बात सुनते हैं तो हमारे मन में सहज ही निराशा घर करने लग जाती है। एक तो हम इतने उत्कृष्ट साधक बन नहीं पाए कि परात्म विद्या को अपना सहचारी बना लें, और थोड़ा बहुत जो परात्म विद्या को उपलब्ध हमने किया भी है तो अब सब छोड़ छाड़ करके जंगल में कहां जाएं, कैसे रहेंगे, क्या होगा। हमारा मानस यदि तैयार नहीं है तो क्या हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए फिर धन्य होने के? क्या इसके अलावा भी और कोई रास्ता है, कोई पद्धति है, कोई पथ है जिसके माध्यम से मैं अपना कल्याण कर सकूं? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए तृतीय श्लोक का प्रारंभ हुआ है। हमारे आचार्यों की एक पद्धति है, हमारे गुरुजनों का एक सिस्टम है, जब वो व्याख्यान प्रारंभ करते हैं तो जो परम समाधान है, जो सर्वश्रेष्ठ समाधान है, जो अंतिम समाधान है, उसको पहले हमारे सामने रखते हैं। आप गीता जी को खोल करके देख लीजिए, जब अर्जुन के सामने समस्या उपस्थित हुई, अर्जुन व्याकुल हो गया और भगवान के शरणापन्न होकर के आर्त भाव से प्रार्थना की कि मैं इस संकट से कैसे उबरूं। शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्न, आप मुझे रास्ता दिखाइए, पथ दिखाइए। तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को आत्मस्वरूप का वर्णन करके सुनाया। श्लोक नंबर 11, द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 11 से लेकर के श्लोक नंबर 30 तक, इन 20 श्लोकों के भीतर इस संसार में जो सर्वश्रेष्ठ प्राप्तव्य है, केवल मानव आत्मा जिसे प्राप्त कर सकती है, जिसको उपलब्ध करने से व्यक्ति कृतकृत्य होगा, व्यक्ति धन्य होगा, व्यक्ति की सारी समस्याओं का समाधान होगा, उस तत्व को भगवान ने 20 श्लोकों में सजा करके रख दिया। भगवान ने पहले कर्मयोग की बात नहीं कही, भक्ति योग की बात नहीं कही, ध्यान योग की बात नहीं कही, जो चरम सिद्धांत है, जो परम प्राप्तव्य है, उसको पहले सामने सजा करके रखा। एक स्वामी जी बता रहे थे, बोले अर्जुन बहुत बीमार हो गया, बहुत डिस्टर्ब हो गया, भगवान ने 18 इंजेक्शन लगाए और एकदम तैयार हो गया। ये पहला वाला इंजेक्शन दिया भगवान ने, डोज काम किया नहीं, बड़ा हैवी था। तो फिर स्वधर्म की बात बताई, स्वधर्मम अपि सावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि। स्वधर्म का पालन करने से व्यक्ति का बड़ा कल्याण होता है, व्यक्ति के जीवन में बड़ा मंगल आता है, व्यक्ति के जीवन में बड़ी पवित्रता आती है। ताकि हम अपने जीवन को और उच्च स्तरों पर ले जा पाए, और पवित्रता ला पाए, और अपने को योग्य बना पाए, इसलिए भगवान ने स्वधर्म की बात उठाई। और स्वधर्म का थोड़ा एक्सटेंशन करते हुए भगवान फिर इस विषय को कर्मयोग में ले गए। ऐसा तेदी हिता सांख्य बुद्धिर योगे तिमाम श्रृणु। और पूरे कर्मयोग का रहस्य सूत्रात्मक भाषा में सजा करके रख दिया। हम देखते हैं कि अर्जुन की जो साधना यात्रा है कैसे आगे बढ़ रही है। और जब कर्मयोग के अनुष्ठान से, कर्मयोग का सीधा सीधा और सबसे सरल जो अर्थ है, अपने संपूर्ण कर्मों को ईश्वर की पूजा बना दो, और जब सारे कर्म ईश्वर की पूजा बन जाएंगे, हमारा पूरा जीवन पूजामय हो जाएगा, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा हर कर्म जब ईश्वर की आराधना बन जाएगा, तो मानस शुद्ध होगा, पवित्र होगा, फिर एक असली साधक कैसे जीता है, उसका जीवन कैसा होता है, मुझे भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए प्रश्न उठता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। और फिर ये जर्नी आगे बढ़ती हो तो गीता का मैटर है, हम तो उधर बहुत दूर तक नहीं जा सकते, परंतु एक चरणबद्धता से साधना कैसे आगे बढ़ती है, ये आचार्यों की एक बड़ी महती कृपा है कि वो स्टेजेस सजा के रखते हैं। इसलिए जो टॉप मोस्ट गोल है वो पहले सामने रखते हैं, यहां तुम्हें पहुंचना है, और वहां के लिए यदि मन तैयार नहीं है, वन गृह विचरंती धन्या, वनवास तक पहुंच जाने की हमारी योग्यता मन में यदि निर्मित नहीं हुई है, कोई बात नहीं, नीचे आ जाइए, वहां से शुरू करिए। साधना का मतलब होता है हम जहां खड़े हैं, जिस परिस्थितियों में खड़े हैं, जिस स्टेज पर खड़े हैं, वहां से हमारे जीवन में पवित्रता के प्रवेश कराने के दरवाजे खोले। और धीरे 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 अपने जीवन को पवित्र करते 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 साधना उस स्तर तक पहुंचती है जब केवल व्यक्ति का जीवन मात्र पवित्र नहीं होता है, उसकी उपस्थिति से पूरा संसार पवित्र होने लग जाता है। हमारे जो ऋषि मुनियों ने जीवन की जो परिकल्पना की, जीवन के जो विभाग किए, आश्रमों के जो विभाग किए, ये समझने लायक और जीवन में उतारने लायक चीजें हैं। कब तक आपको अध्ययन करना है, भावी जीवन के लिए एक आपको फाउंडेशन तैयार करना है, आने वाले आघातों को सहन करने के लिए अपने मन को मजबूत करना है, इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम की एक परिकल्पना की, जहां पर आप तप करके, संयम करके, साधना करके, निखर करके, इतने मजबूत होकर के निकल जाए कि भावी जीवन में आने वाला कोई भी आघात आपको तोड़ ना सके। इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन की परिकल्पना थी। राजा का भी यदि लड़का होता था, चक्रवर्ती सम्राट का भी यदि लड़का होता था, तो गुरुकुल में रहता था, श्रद्धा और संयम पूर्वक गुरु की सेवा करता था, गुरुकुल के नियमों का पालन करता था, और अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने जीवन को इतना कठोर, इतना संयमशील और इतना परिपक्व बनाता था कि भावी जीवन में आने वाले हर आघात से अपने को रक्षा कर सके, अपने को बचा सके। आज हमारा समाज कहां जा रहा है, मैट्रिक में फेल हो गया, सुसाइड कर दिया, एक ही लड़का था, जॉब से निकाल दिया, डिप्रेस्ड होकर के सुसाइड कर दिया। कमी कहां है, गैप कहां है, कहीं ना कहीं जो मजबूती, ये जीवन तो विचित्र है ही है, यहां अनुकूलता और प्रतिकूलताएं निश्चित नहीं है, किस समय किधर से आघात आएगा, किस समय कहां से असफलता आएगी, किस समय कहां से सफलता आ जाएगी, इसके गिने गिनाए सूत्र नहीं है। इस अज्ञात सत्ता के साथ आनंद पूर्वक जीना जो सिखा दे, उसी का नाम तो विद्या है। हर आघात के सामने सीना तान करके खड़ा करना सिखा दे, उसी का नाम तो ब्रह्मचर्य आश्रम है। और जब ब्रह्मचर्य की तपस्या से तप करके और निखर करके एक युवक निकलता था, एक समाज का जिम्मेदार नागरिक बनकर के निकलता था, फिर वो चोर नहीं होता था, वो भ्रष्टाचारी नहीं होता था, वो आतंकवादी नहीं होता था, वो शोषक नहीं होता था, वो समाज का पोषक होता था, उसके मां बापों को वृद्धागृह आश्रम में जाकर के जीवन व्यतीत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि संयम से जीना, संघर्ष करते हुए जीना, संतोष से जीना उसके खून की बूंद बूंद में भरा हुआ था। इसलिए उसका गृहस्थ सफल होता था, आनंद से जीता था, प्रेम से जीता था, मस्ती से जीता था। और इतना परिपक्व और मजबूत होकर के जब समय आता था तो अपनी जिम्मेदारियां नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करके एकांत में शांति से जीता था। और जब चतुर्थ आश्रम आ जाता था तो एकमात्र परमात्मा का आश्रय लेकर के सबसे विरक्त होकर के घर में रहे, ऐसा पवित्र प्राणी साए घर में रहे, जंगल में रहे, नगर में रहे, जहां रहे वो सन्यासी है। इतना पवित्र जीवन जीता था। ये जो एक जीवन की पद्धति थी, ये जो एक जीने का तरीका था, हमारी वासनाओं ने, भोगों की प्रबल कामनाओं ने इस पद्धति के साथ छेड़छाड़ की है। इसको बहुत अंश में नकारा है हम लोगों ने, और उसका फल यही है, इंद्रियों के ऊपर हमारा कोई अनुशासन नहीं रहा, हम ज्यादा पराधीन होते गए, हम प्रतंत्र होते गए, और संकट और कष्ट हमारे समाज में बढ़ते गए, आसक्ति बढ़ती गई, खींचातानी बढ़ती गई, अशांति बढ़ती गई। पहले 10 लोगों का परिवार होता था, 15 लोगों का परिवार होता था, घर में खाने पीने की कमी रहती थी, परंतु लोग बड़े शांति से और प्रेम से जी लेते थे। आज 4 लोगों का परिवार है, पर्याप्त संसाधन है, खाने की कमी नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है, परंतु एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, प्रेम से देख नहीं पाते, प्रेम से। ये परिस्थितियां किस कारण से निर्मित हुई है? संस्कारों के अभाव के कारण, सत्चिंतन के अभाव के कारण। परंतु अब ऐसा है भैया, अब इसके लिए बहुत ज्यादा आंसू बहाने से तो कुछ होगा नहीं, ये संसार का स्वरूप ही ऐसा ही है। इसको पूरा पूरा ना राम ठीक कर पाए, ना कृष्ण ठीक कर पाए, ना हमारे जो पहले वाले गुरु लोग सब आकर के गए, वो ठोक पीट करके थोड़ा बहुत एडजस्ट करके जैसे चलना था अपना काम करके चले गए। अब हम साधकों को क्या करना है, हमारे लिए कर्तव्य क्या है, अपने कल्याण के लिए हमें क्या करना है? एक संत ने कहा कि 2 काम करने से हो जाएगा, सिर्फ 2। 2 बातन को याद रख जो चाहे कल्याण, 2 बातन को याद रख जो चाहे कल्याण। क्या क्या? नारायण एक मौत को र दूजे श्री भगवान, नारायण एक मौत को और दूजे श्री, वेरी सिंपल फिलोसॉफी। कल्याण के लिए इतना सरल रास्ता हो सकता है, बड़ा आश्चर्य लगता है। हम तो अपने कल्याण के लिए पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, पुस्तकों की पुस्तकें रट लेना चाहते हैं, घंटों भर जो है सिर नीचे करके पैर ऊपर करके यदि हम जप कर पाए, तपस्या कर पाए, साधना कर पाए, ऐसा संकल्प रखते हैं, भगवान यदि ऐसी शक्ति दे दे, ऐसा वैराग्य दे दे कि सबको छोड़ छाड़ करके जा भाड़ में कहीं जाकर के हरिद्वार में, उत्तर काशी में, हिमालय में, गंगा के किनारे वास करें, ऐसे सपने हम देखते हैं, ऐसी परिकल्पनाएं हम करते हैं। परंतु जो बहुत सिंपल चीज है, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, इतनी उठापटक काहे करना चाहते हो? केवल दो काम कर लो ना, एक तो मौत को हमेशा याद रखो, मैं यहां यात्री बन करके आया हूं और मुझे एक दिन चले जाना है, मुझे एक दिन चले जाना है। हम भूल जाते हैं, बड़ी गहराई से भूल जाते हैं, अंतस की गहराई में ये बिठा करके रख देते हैं, आई एम परमानेंटली हेयर। जब मौत याद नहीं है तो भगवान तो याद आने का प्रश्न ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। एक संत ने अपना अनुभव बताया, श्लोक तो आज पूरा करना है, एक दृष्टांत सुना करके फिर श्लोक के पदों में दोबारा आता हूं। उन्होंने अपने गुरुजी को जाकर के पूछा, इसी श्लोक का अर्थ पूछा, मौत को याद करने से तो व्यक्ति डरेगा, घबराएगा, फिर भगवान कैसे याद रहेंगे? गुरुजी आपका कोई अनुभव है तो बताइए। पहले तो गुरुजी हंसे, फिर कहा कि हमारा एक छोटा सा एक घटना है, हम तुमको बता सकते हैं। 40-50 साल पुरानी घटना है, कोई बहुत पुराना इतिहास में नहीं सुना रहा। बोले हम वृंदावन में रहते थे, इलाहाबाद का कुंभ था, हम अपने गुरुजी के आश्रम में रहते थे, गुरुजी ने मंदिर में पूजा करने की जिम्मेदारी हमको दे करके रखी थी, अंग्रेजों का राज था। सॉरी 50 साल से पुरानी बात है, 70-80 साल पुरानी घटना होगी, अंग्रेजों का राज था। भगवान की सेवा हमारे गुरुजी ने देके रखी थी, हम मंदिर में पूजा इत्यादि करते थे, सब महात्माओं ने कहा कि इलाहाबाद का कुंभ मेला आया है, बड़े बड़े तपस्वी सिद्ध महापुरुष ब्रह्मज्ञानी संत सब कुंभ मेला में आएंगे, हम लोग तो जा रहे हैं ब्रह्मज्ञानी लोगों के दर्शन करेंगे, और सुना है कि उधर भंडारा भी खूब खाने को मिलता है, दक्षिणा भी खूब खाने को मिलती है, एक पंथ दो काज होंगे, मुफ्त में ब्रह्मज्ञानियों के दर्शन हो जाएंगे, भंडारा खूब खाने को मिलेगा, संत दर्शन खूब होगा, दक्षिणा भी मिलेगी, कुंभ मेला करके घूम के वापिस आ जाएंगे, तुमको भी चलना है तो चलो। बोले हमने कहा कि हमारे तो गुरुजी ने मंदिर का दायित्व तो दे करके रखा है, हमको तो छोड़ेंगे नहीं। कहा कि ऐसा है कि फलाने बगीचे में हम लोग जाकर के रात भर रुकेंगे और वहां से रेलवे स्टेशन पास में कल सुबह बस पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, तुमको आना है तो सुबह की प्रभात की आरती करके लोटा लेकर के निकलना और फिर यमुना जी के किनारे किनारे चलते चलते वह जंगल उस बगीचे तक चले आना, सब मिल करके चले जाएंगे। साधक था, नया था, युवक था, बात अच्छी लग गई, गुरुजी को बताया भी नहीं। और दूसरे दिन सुबह जो है भगवान की प्रभात की आरती करके दो कपड़ा कंधे पर लेकर के कमंडलू हाथ में लिया और दे पहुंचा बगीचे में जाकर के, सब लोग इकट्ठे होकर के ट्रेन में बैठ करके चल पड़े इलाहाबाद के लिए। चलते 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 चुनार तक पहुंचे, वाराणसी से पहले विंध्यासल के एरिया में, विंध्यासल से थोड़ा आगे चुनार एक जगह है। ट्रेन रुक गई अचानक, टिकट चेक करने के लिए अंग्रेजों के जमाने के अधिकारी आए, रेलवे में कौन कौन भी टिकट है उनको चेक करने के लिए। उस समय टिकट चेकिंग में एक व्यक्ति का बड़ा आतंक था, नाम था कानू बाबू, बंगाली कोई टीटी था, साधुओं से बड़ी घृणा करता था, और किसी साधु को बिना टिकट देख ले तो बिना जेल की हवा खिलाए छोड़ता नहीं था। ये बाबा जी लोगों को पता चला, अरे टिकट चेकिंग हो रही है, कानू बाबू आया है, कानू बाबू आया है, कानू बाबू आया है, साधुओं में हड़कंप मच गया। और बोले जैसे ही ट्रेन रुकी ना रुकी, साधु लोग जितने थे अपना कमंडल, अपना कपड़ा, अपना सामान छोड़ छाड़ करके दे धड़ाधड़ कूदे नीचे। बोले हमको तो कुछ समझ में भी नहीं आया, कहा कि जल्दी आओ नहीं तो मर जाओगे, 10 साल 50 साल 20 साल जेल में पड़े रहोगे, ये पकड़ के ले जाएगा जेल में साधुओं को। बोले जैसे ही कूदे तो पीछे से अंग्रेज वही घोड़ा सवार लेकर के साथ में आए थे, बहुत देर तक लोगों के पीछे घोड़ा दौड़ाया, कौन किधर भागा किसी को पता ही नहीं चला, घना जंगल था, सब जंगल में चले गए। बोले हम भी गिरे, हमारा चोट फोट भी लगी, परंतु अब उस चोट की किसको ख्याल रहे, भागते 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 बोले जंगल पार करके मैं एक गांव में पहुंचा। रात हो गई, उस गांव के पास में ही अंग्रेजों की सेना की छावनी थी। गांव वालों ने कहा रे तू फकर जैसा दिखने में लगता है, रात में कहां से आया, ये अंग्रेजों की छावनी है, पास में उनको पता चल जाएगा, घर घर की तलाशी लेंगे, बहन बेटी को परेशान करेंगे, भाग यहां से। बोले गांव में घुसने भी नहीं दिया। रात हो गई, विंध्याचल का जंगल, जंगल के भीतर एक छोटा सा गांव, वहां पर भी रात में आश्रय नहीं दिया, कहां जाए। बोले एक पगडंडी जा रही थी जंगल में, अब और कहां जाए। उस पगडंडी को पकड़ करके मैं धीरे 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 चला तो एक पहाड़ की चोटी पर छोटी सी लाइट दिख रही थी, प्रकाश दिख रहा था। आगे बढ़ा धीरे धीरे, देखा दूर से दिखाई पड़ा थोड़ा सा मंदिर है कोई। मंदिर में गया, बोले पुजारी पूजा करके मंदिर का ताला लगा करके जा ही रहा था। उसने कहा कि अरे बाबा तू रात में यहां कहां से आया, यहां कोई सुरक्षा नहीं है, छोटा सा जंगल है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, और भगवान का मंदिर भी इतना छोटा है कि उसके भीतर एक व्यक्ति रह नहीं सकता, और यहां शेर खा जाएंगे, यहां चीते रहते हैं, शेर रहते हैं, भालू रहते हैं, चला जाए यहां से। बोले मैं एक तो परेशान दिन भर का, गांव वालों ने दुत्कार के भगा दिया, और मुझे लगा कि ये भी नहीं रहने देगा। बोले शेर खा जाएगा तो तुम्हारे बाप का क्या जाएगा, जा तू यहां से। बोले पुजारी को लड़ाई करके भगा दिया वहां से मैंने, और पुजारी के ऊपर भी मुझे ना तो विश्वास आया, और तकरार ऐसी हो गई कि पुजारी ने ये नहीं कहा कि मेरे साथ चल जा, मेरे घर रात काट लेना। बोले रह गया मैं जंगल में, अब 12 बज गया। महात्माओं से सुना तो था कि जब आग लगती है तो आग के पास हिंसक प्राणी नहीं आते हैं, लकड़ियां इकट्ठी की, आग जला दी और बैठ गया। पेट में एक भी दाना नहीं, नींद आए तो कैसे आए। बोले ठाकुर जी का नाम जपना प्रारंभ किया, धीरे धीरे आग जल रही थी। देखा कि रात को 2 बजे अचानक एक शेर ने एक हिरण को पकड़ करके मार के कहां से मंदिर के पीछे से कूदी, सीधे वो आग के सामने आकर के खड़ी हुई। आवाज सुनकर के हमारी आंख खुली, शेरनी ने एक बार हमारी तरफ देखा, हमने तो सोचा कि अब गए, थक धक 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 करने लगा, आग थोड़ी जल रही थी। बोले भगवान ने उसको प्रेरणा दी होगी, वो थोड़ी देर खड़ी रही, मेरी तरफ देखा और उससे हिरण का जो शिकार किया था लेकर के नीचे जाकर के बैठ गए, वहीं खाना शुरू किया। आप बोले धक धक, मैं धीरे धीरे देख रहा हूं हिरण को थोड़ा थोड़ा खा रही है। बोले ये जब इसका खाना पूरा हो जाएगा तब मेरा नंबर है, अब हिल भी नहीं सकता मैं, आग की लकड़ियां भी अब समाप्त हो रही है, आग भी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, अब तो कोई सहारा नहीं है, ठाकुर बसाए तो बसा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। बोले जो एकाग्रता से पुकारना शुरू किया, भगवान का नाम लेना शुरू किया, नारायण 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 नारायण, बोले श्वास के साथ से भी ज्यादा नाम की स्पीड कर दी, श्वास भी बदलता था तो नाम बंद नहीं हो रहा था, नारायण 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 नारायण। 2 बजे 3 बजे 4 बजे प्रकाश हुआ, इधर उधर से सहसहाट होने लगी, जंगल में हलचल होने लगी। जब प्रकाश आया तो शेरनी उठ करके धीरे 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 चली गई। उस दिन मुझे समझ में आया, यदि समझ में आ जाए कि मौत सिर में खड़ी है तो भजन कैसे होता है, भगवान की याद कैसे आती है। उस दिन से बोले मन जो लगा राम में आज तक बोले और भटका नहीं, आज तक और भटका नहीं। और उसी ने इतनी मजबूती दे दी कि अब संसार के किसी भी पदार्थ पे मन आसक्त नहीं होता है। हमारे मन में जो इतनी आसक्तियां हैं, इतने आग्रह हैं, ये किस कारण से हैं? मौत की याद नहीं है कि मुझे मरना है, मुझे चले जाना है। और जब तक मौत ही याद नहीं है तो परमात्मा याद आना बहुत दूर की बात है। इसलिए अपनी आसक्तियों को यदि कम करना है तो सब साधकों को कम से कम 24 घंटे में एक बार बैठ करके ये गहराई से विचार करना चाहिए कि और कितना दिन, हाउ मेनी डेज आई हैव इन माई हैंड्स, नॉट ईयर्स, इवन नॉट डेज, बिकॉज देर इज नो सर्टेनिटी। ये चीज यदि हमें याद रह जाए तो हमारे सारे आसक्ति के बंधन ऐसे पिघल जाएंगे जैसे बर्फ का डला तेज आग में रखने से पिघल जाता है। हमारी आसक्तियां पिघलती क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी भी मौत को पीछे धकेलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे भीतर एक एक्सेप्टेंस ही क्रिएट नहीं हुई है कि यह शाश्वत सत्य है, उसका हम दिल खोल के स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन हमारा मानस मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएगा, सारी आसक्तियां बर्फ के ढले की तरफ पिघल करके बह जाएगी। मृत्यु के ऊपर हमारा चिंतन बड़ा उथला है, मृत्यु के विषय में हमारी समझ बड़ी कमजोर है। गीता में भगवान की अनेक बातें दिल को छू जाती है, परंतु भगवान की जिस एक बात ने मेरे दिल को बहुत गहरे से छुआ वो बड़ी मजेदार है। कितना जीवन में उतार पाऊंगा तो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि साधकों की तो अनेक समस्याएं होती हैं। पुराणों में हम सुनते हैं कि जब किसी भक्त का अंतकाल आता है तो भगवान अपने दूतों के साथ एक विमान भेजते हैं और बड़े सत्कार के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान के दूत उस भक्त को विमान में बिठा करके वैकुंठ लोक ले जाते हैं। मैं ये सुन सुन के बड़ा निराश होता था, शायद मैं कभी इतना बड़ा भक्त बना पाऊंगा कि नहीं मुझे तो पता नहीं है, और ऐसा विमान आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, कैसे ले जाएंगे, कौन ले जाने के लिए आएंगे, भगवान जम के दूतों को भेजेंगे मारपीट करके बड़ा कष्ट से ले जाएंगे, क्या होंगे। भगवान ने गीता जी के 10वें अध्याय में मेरी समस्या का समाधान कर दिया। बोले पगले, तू दूतों के लिए रोता है, तुझे ले जाने के लिए मैं स्वयं आऊंगा, तुझे ले जाने के लिए मृत्यु सर्वहरश चाहम, सर्वस्व हरण करने वाली मृत्यु कौन है? भगवान की एक विभूति है,
भगवान का एक रूप है। ये पवित्र भाव, ये पवित्र चिंतन यदि हमारे दिल की गहराई में बैठ जाए, जब अंतकाल समय आए, जब श्वास बंद होने जाए और साधक को भगवान की ये बात यदि याद आ जाए, मृत्यु सर्वहरस चाहम, और साधक तैयार होकर के बैठ जाए, मेरा इष्ट आ रहा है, मेरा आराध्य आ रहा है, जिनकी अपेक्षा में, जिनके विरह में मैंने पूरा जीवन बिता दिया, वो क्षण आ गया जब मेरा आराध्य मेरे सामने प्रकट होने वाला है।
क्या ऐसी मृत्यु कभी दुखदायी हो सकती है? क्या ऐसी मृत्यु कभी आंखों में आंसू दे सकती है? क्या ऐसी मृत्यु से कभी कोई डर सकता है? हमारा तो प्राण कांप जाए। कोई डॉक्टर यदि एक डेडलाइन तैयार कर दे, ओनली 6 मंथ्स, तो हम तो 6 महीने पहले ही मर गए। जिस दिन डॉक्टर ने बताया उसी दिन मर गए, बाकी तो कष्ट में जी रहे। हमारे पास समझ बड़ी कमजोर है, हमारा जीवन बड़ा आसक्तियों से भरा हुआ है, हम बड़े कमजोर बने हुए पड़े हुए हैं। आसक्तियों के बंधन से ऊपर उठना है तो हमें एक दिन चले जाना पड़ेगा, इसकी तैयारी हमें शुरू करना पड़ेगा। और नहीं तो आसक्तियों में बधे रह गए तो ये तो भैया अधपतन का हेतु है। इसलिए दूसरे स्टेज पे आकर के आचार्य बात करते हैं, त्यक्त्वा गृहे रति मदोगति हेतु भूतम। ये जो इतनी आसक्तियों के बंधन में बंधे हुए हैं, इससे हमारा कोई कल्याण नहीं हो रहा है, हमारा कोई मंगल नहीं हो रहा है, हमारा कोई उपकार नहीं हो रहा है। अधोगति हेतु भूतम, ये हमारे अधपतन के कारण है, ये हमारे अधोगति के हेतु है। व्यक्ति को स्टेज बाय स्टेज मैच्योर होना पड़ता है। एक बच्चा जब छोटा होता है अपने खिलौनों में बहुत आसक्त होता है, उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न होता है। एक खिलौने के लिए वो रात दिन रोते रोते निकाल देता है बिना खाए। थोड़ा बड़ा होता है, अपनी आसक्ति को छोड़ता है, अपने अध्ययन में आसक्त हो जाता है। थोड़ी मैच्योरिटी आई, अध्ययन ही उसका जीवन होता है, शिक्षक और उसके सहपाठी ही उसका संसार होता है। थोड़ा बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उस आसक्ति को छोड़ देता है। अब जॉब, कॉलिक, कंपनी, यही उसका संसार है, यही उसका जीवन है। घर परिवार संसार, यही उसका जीवन है। तो बताओ, यदि बच्चा उस खिलौने की आसक्ति को छोड़ करके यदि ऊपर नहीं उठता और अपने खिलौने में ही यदि मग्न रहता, अपने खिलौने में यदि रमा रहता, तो वो कभी शिक्षित होता? स्कूल की यदि आसक्ति नहीं छोड़ता, स्कूल में अपने टीचर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ यदि रमा रहता, तो कभी जॉब पाता? हायर स्टेज में जाने के लिए व्यक्ति को अपनी समझ को कन्वर्ट करना पड़ता है, और जैसे जैसे उसका चित्त मैच्योर होता है, उसकी समझ मैच्योर होती है, उसके भीतर मैच्योरिटी आती है, तो धीरे धीरे वो लोअर क्लास की आसक्तियों को छोड़ करके हायर चीजों को एक्सेप्ट करता है। परंतु एक स्तर पर जाकर के हमारी एक्सेप्टेंसी रुक जाती है, हम आसक्ति को छोड़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि आसक्ति हमको दुख छोड़ना दुखदायी लगने लगता है। परंतु ये अपने ग्रोथ के, अपने विकास के खिलाफ है। ये स्टेज हमें प्राप्त करना है, यदि हायर स्टेज हमें जीवन में प्राप्त करना है, कोई अच्छी स्थिति यदि जीवन में प्राप्त करनी है, कोई शाश्वत शांति यदि हमें जीवन में प्राप्त करनी है, तो एक स्टेज पर जाकर के साधक को अपनी आसक्तियों को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सीधे सीधे छोड़ने की बात नहीं आ रही, कम से कम मॉडिफाई तो किया जाए। कन्वर्ट तो किया जाए अच्छी चीजों में, अपनी दुराशक्तियों को, अपने दुर्व्यसनों को। और फिर चित्त जब और मैच्योर हो जाता है, जब और परिपक्वता आ जाती है, जब हम और मजबूत हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आसक्तियां पिघलने लगती है, गलने लगती है। आसक्तियां छोड़ने के लिए क्या करें, उसका समाधान दूसरी लाइन में बताया, आत्मेचयो उपनिषदार्थ रसम पिबंता। अपने आसक्तियों को यदि गलाना है, अपनी आसक्तियों को यदि छोड़ना है, तो उपनिषद का जो अर्थ रूपी रस है उसका रस पान करो। संसार में और कोई विद्या नहीं है जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। भगवान भाष्यकार का एक और दूसरा ग्रंथ है आत्मानुसंधान, वहां पर एक बात बताते हैं, कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम तर्के नैवास्ति निश्चयः सांख्य योगो भिदापन्नो शाब्दिकः शब्द तत्परा अन्ये पाखंडिनः सर्वे ज्ञानवार्ता सुदुर्लभा एकं वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते। अपना कल्याण यदि करना है तो उपनिषद ही एकमात्र शरण है, इस संसार में और कोई शरण है नहीं, हो नहीं सकता। कर्मशास्त्रे कुतो ज्ञानम, ये जो टेक्निकल नॉलेज है, ये नॉलेज, ये विद्या पेट कैसे भरना है सिखा सकती है, आत्मा का आविष्कार कैसे करना ये नहीं सिखा सकती, वो उसका सब्जेक्ट नहीं है। आप आर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको मेडिकल साइंस का ज्ञान नहीं हो सकता, आप मेडिकल साइंस पढ़ेंगे तो आपको फोटोग्राफी का नॉलेज नहीं हो सकता। प्रत्येक का अपना अपना फील्ड है, कर्मशास्त्र का, कर्म ज्ञान का ये फील्ड नहीं है कि हमारे सामने आत्मा के स्वरूप को ला करके प्रस्तुत कर दे। कर्मशास्त्र कुतो ज्ञानम तर्क नेवास्ति निश्चय, और तर्क शास्त्र कभी भी व्यक्ति को चरम निश्चय पर नहीं पहुंचा सकता। आज एक तर्क एक युक्ति से पदार्थ को एक प्रकार से प्रतिपादित करता है, प्रबल तर्क आएगा उसको काट करके भी वस्तु को दूसरे ढंग से प्रतिपादित कर देगा। पहले हम लोग समझते थे पृथ्वी स्थिर है, सूर्य इत्यादि ग्रह नक्षत्र सब उसकी चारों तरफ घूमते हैं, और वर्षों वर्षों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यही विश्वास करती रही, यही मानती रही। साइंस जब एडवांस हुई, गैलीलियो इत्यादि जब वैज्ञानिक आए, उन्होंने रिसर्च किया और ये चीज स्थापित कर दी युक्ति से, तर्क से, प्रमाण से, सूर्य स्थिर है और बाकी सारे उसके चारों तरफ घूमते हैं। तर्क से बातें कटती है, सिद्धांत बदलते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है, इसलिए चरम सिद्धांत तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तर्क नेवास्ति निश्चय सांख्य योगो भिदापन्नो, सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र तो स्वयं ही भेद में जाकर के समाप्त होते हैं, आपको अद्वैत तत्व में प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। और शाब्दिका शब्द तत्पराः, शाब्दिकों की, ग्रामरों की तो बात ही क्या बताए, वो तो शब्द को ही लेकर के लगे रहते हैं, ये धातु ये प्रत्यय, ये धातु ये प्रत्यय। अरे भैया, शब्द के धातु और प्रत्यय से हम पेट भरेंगे कि क्या करेंगे। शाब्दी का शब्द तत्पराः, अन्य पाखंडिना सर्वे, और ये खाने से कृपा आएगी, वो खाने से कृपा आएगी, ये दीपक जलाने से ये होगा, ये नगीना पहनने से ये होगा, आत्मज्ञान के क्षेत्र में सब बोगस है। अन्य पाखंडिना सर्वे, एकम वेदांत विज्ञानम,
एकमात्र वेदांत विद्या है, एकमात्र वेदांत विज्ञान है, एकमात्र उपनिषद है स्वानुभूत्या विराजते, जो आपको आत्मानुभूति में, आत्म तत्व में प्रतिष्ठित कर सकते हैं।
एकम वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते आत्मेचयो उपनिषद अर्थरसम पिबंतः।
अपने असली स्वरूप को जानने के लिए, अपनी असलियत का आविष्कार करने के लिए, अपनी सारी समस्याओं का सदा सर्वदा के लिए समाधान करने के लिए केवल मात्र उपनिषद प्रतिपाद्य एकमात्र रास्ता है। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः।
और एक बात ख्याल रखनी चाहिए,
बहुत बार साधकों के सामने एक प्रश्न उछाला जाता है, उठाया जाता है, उपनिषदों को समझने के लिए उच्च अधिकार की जरूरत होती है। उपनिषदों को समझने के लिए क्या क्या अधिकार चाहिए? साधन चतुष्टय संपत्ति चाहिए, नित्य अनित्य वस्तु विवेक हो, वैराग्य हो, सट संपत्ति हो, मुमुक्षुता हो, तब ना आप उपनिषद सुनने के अधिकारी बनोगे। आपको अधिकार ही नहीं है तो उपनिषद सुनकर के क्या करोगे?
मेरा प्रश्न ये है, मान लिया कि हमारे भीतर अधिकारिता नहीं है तो फिर क्या खेतीबाड़ी करें? क्या खेतीबाड़ी करने से हमारे भीतर अधिकारिता आएगी?
तो कहां से अधिकारिता आएगी? ये अधिकारिता शास्त्र का श्रवण करते करते, उपनिषद का श्रवण करते करते, उपनिषद का मनन करते करते आएगी। इसलिए जो साधकों को निरुत्साही करते हैं कि अरे तुम क्या उपनिषद सुनोगे, तुम तो गृहस्थी हो, तुम तो अभी अधिकारी ही नहीं बने हो, तो क्या हमको गृहस्थी बने रहने से हमारे दिल में अधिकारिता आएगी? क्या खेतीबाड़ी करने से अधिकारिता आएगी कि कुएं से पानी निकालने से अधिकारिता आएगी?
अधिकारिता नहीं है, ये ठीक बात है। और जब तक अधिकार पूरा नहीं आएगा तब तक वेदांत विद्या अपना काम भी नहीं करेगी, ये भी ठीक बात है। परंतु अधिकार प्राप्त करने का रास्ता भी तो यही है भैया, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, विवेक करो। जब सत्संग नहीं सुनेंगे, जब चिंतन नहीं करेंगे, जब विवेक नहीं करेंगे, तो अधिकारिता क्या आकाश से टपक जाएगी?
इसलिए साधक को आत्म कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए निरंतर शास्त्र चिंतन में लगे रहना चाहिए। आत्मेचयोपनिषद अर्थरसम पिबंतः। इसलिए जो लोग निरुत्साह करे तो साधक को अपने भीतर कभी निराशा नहीं आने देनी चाहिए। हाँ, अधिकारिता नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, समझना चाहिए मेरी क्या कमजोरियां हैं, मुझे कैसे इससे पार निकलना है। परंतु अधिकारिता नहीं, इसके लिए मैं अध्ययन ही बंद कर दूंगा तो किसी भी समय आप में अधिकारिता नहीं आएगी। पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते तो संभव है कि किसी दिन हम अधिकारी बन जाए। दूसरी बात, एक चीज, ये वेदांत विद्या है ही ऐसी, इसको वेदांत के भीतर घुसे बिना आप और कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते हो। और वेदांत विद्या की जो साधना है वो श्रवण, मनन और निधिध्यासन। हम लोगों के मन में परिकल्पना क्या होती है, कोई यदि एक घंटा पद्मासन लगा करके, मेरुदंड को एकदम सीधा रख करके, अपने नेत्रों को भ्रुवों के मध्य में लगा करके ऐसे एकदम स्टील बैठा हो, तब तो उसने साधना किया। और एक घंटा यदि वेदांत का सत्संग सुना हो तो सुना है, और क्या है। सुनने को हम साधना की कैटेगरी में नहीं मानते, और यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जब तक वेदांत श्रवण मेरी तपस्या नहीं है, जब तक वेदांत श्रवण मेरी साधना नहीं है,
तब तक वेदांत का रास्ता और दरवाजा आपके लिए खुला नहीं है। टाइम हो रहा, फिर भी एक बात बता करके मैं मेरी बात पूरी कर रहा हूं। तपस्या के नाम पर हम बहुत कुछ उठापटक करना चाहते हैं और हमारे मन में बड़े संकल्प रहते हैं और सत्संग श्रवण के प्रति हमारा अपना जो विचार है वो भी थोड़ा निम्न ही रहता है। अच्छा सुन लेते हैं टाइम पास करने के लिए। ये तपस्या है, ये साधना है, ये मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने वाला, इसको ऐसा साधन के रूप में हम पकड़ते नहीं है। आचार्य शंकर का एक प्रमाण देकर के मैं मेरी बात पूरी कर रहा हूं। हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के प्रायश्चित कर्मों का वर्णन है और जो एक प्रमुख प्रायश्चित है उसका नाम है कृष्ण सांद्रायण व्रत। आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा कृष्ण सांद्रायण व्रत। उसके अनेक प्रकार होते हैं, वो तीन दिन का होता है, सात दिन का होता है, 21 दिन का होता है। एक कृष्ण सांद्रायण व्रत होता है एक महीने का, छह महीनों के भी होते हैं, 12 महीनों के भी होते हैं, 5 साल के भी होते हैं, परंतु जो प्रसिद्ध है कृष्ण सांद्रायण व्रत के नाम से जिसका अनुष्ठान किया जाता है एक महीने का होता है। नियम क्या होता है, प्रतिपदा को 1 ग्रास भक्षण करेगा, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, करते करते पूर्णिमा तक 15 ग्रास जाएगा और ग्रास का भी अपना माप ऐसा नहीं कि 1 किले का ग्रास बना दिया, कुकुटांड सा माप दिया है, एक माने एक मुट्ठी में आपका जितना भर जाए ऐसा। और फिर धीरे धीरे 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 ये एक महीने में एक कृष्ण सांद्रायण पूरा होता है। और एक दिन वेदांत श्रवण करने से 80 कृष्ण सांद्रायण व्रत करने का पुण्य मिलता है, पता आपको? 80 महीना कठिन कृष्ण तपस्या करने का जो फल मिलता है एक दिन के वेदांत सत्संग के श्रवण करने से मिलता है। इतनी बड़ी साधना से आप दूर हट जाओगे तो अधिकारिता आएगी कहां से? दिने दिने तू वेदांत श्रवणात भक्ति संयुतात गुरु शुश्रूषया लब्धात कृष्णाश्रिति फलम लभेत। आचार्य शंकर की बात है, मैं मेरे मन की बात नहीं बता रहा हूं। दिने दिने तू वेदांत श्रवणात, प्रतिदिन वेदांत का श्रवण करने से। कैसे? दिने दिने तू वेदांत श्रवणात भक्ति संयुतात, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, ये मेरे कल्याण का साधन है, टाइम पास करने के लिए नहीं। भक्ति संयुतात गुरु शुश्रूषया लब्धात, और गुरु की शुश्रूषा पूर्वक, गुरु की सेवा पूर्वक, गुरु शुश्रूषया लब्धात कृष्ण अशीति फलम लभित। 80 कृष्ण सांद्रायण व्रत करने का जो फल होता है एक दिन वेदांत के श्रवण का फल होता है। इतनी बड़ी साधना से यदि आप दूर रह गए और फिर कहेंगे कि भाई हमारे में तो अधिकारिता नहीं है, हम वेदांत कैसे सुने, हम सत्संग कैसे सुने, तो मेरा प्रश्न यह है अधिकारिता आएगी कहां से? आपकी योग्यता के ऊपर, आपके पास कितना टाइम है, कम से कम 1 घंटा से तो शुरू हो, फिर उसको आप बढ़ाइए। वहां घंटा नहीं लिखा है, दिने दिने लिखा, प्रतिदिन। तो दिन का मतलब है, देखो हमारी साधना कोई अतिमानवीय प्रयास नहीं है, साधना का मतलब होता है मानवीय सीमाओं के भीतर रहते हुए अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार हम अपने उत्कर्ष के लिए प्रयास करें, इसलिए मैंने 1 घंटा शब्द का प्रयोग किया। तो ये बात हमेशा ख्याल रखना, दिने दिने तू वेदांत श्रवणात भक्ति संयुतात गुरु शुश्रूषया लब्धात कृष्णाश्रिति फलम लभेत। उसी बात को यहां दूसरे शब्द में बताए रहे हैं, आत्मोच्चया उपनिषद अर्थ रसम पिबंतः। आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा रख करके जो उपनिषद के अर्थ रस का पान करते हैं ते धन्याः, वे लोग धन्य है। तृतीय श्लोक आज कंप्लीट करना था परंतु 2 लाइन बस रही है, फिर थोड़ा इसका और चिंतन करके कल विषय को आगे बढ़ाएंगे। परमात्मा से यही प्रार्थना, बोलिए।
सबसे बड़ी चीज ये है, ये जो वेदांत विद्या है ये ट्रेडिशनल विद्या है, इसको केवल आप बुकिस्ट नॉलेज नहीं समझ सकते और केवल बुक के आधार पर आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। जो इसके ट्रेडिशनल ज्ञाता हैं, जो इसके आचार्य हैं और जिन्होंने इस विद्या को अपने जीवन में उतार के रखा है, उनके सानिध्य से आप ग्रहण करेंगे तो ये विशेष फलदायक होगी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।